शांति।
जिस समय परिस्थिति काल के अनुसार बाबा ने कहा है, जैसे आज की मुरली त्रिकालदर्शी होके कि मुरली तो चली 25 मार्च 1986 में है, लेकिन ये मुरलियां कैसे त्रिकालदर्शी हैं? तीनों कालों को स्पष्ट दर्शाते हैं कि कभी भी आप मुरली सुनो, कोई भी मुरली उठा के आंख बंद करके उठा लो तो वो हर परिस्थिति के अनुकूल होती है, जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसके आधार पर होती है। कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगी जरूर। तो बाबा जैसे आज की मुरली में कहा ना कि त्रिकालदर्शी बन गए, मास्टर त्रिकालदर्शी तुम भी बन गए, तो बाबा कैसे हर एक मुरली को कैसे कंपैरिजन करता है? है रहते ही चार ही सब्जेक्ट, ज्ञान योग सेवा धारणा, उसमें बाबा कैसे कंपैरिजन करता है? जैसे अव्यक्त वाणी अगर आप लो तो बाबा उसमें एक एक पॉइंट में बहुत बड़ा गहराई होती है, कुएं के समान, सागर के समान। और जो बाबा के साकार मूल्यां हैं वो स्पष्ट करती हैं हर एक पॉइंट को, जो अव्यक्त हुए अव्यक्त वाणी के पॉइंट हैं उनको साकार वाणी में स्पष्ट करते हैं। तो बाबा प्रेजेंट के हिसाब से भी फ्यूचर और पास्ट तीनों कालों का, जैसे आज की मूल्य है संगम योग, होली जीवन योग। तो कैसे बाबा ने इस मुरली में विस्तार किया है? तो इसमें आज की जो मुरली है इसमें 8 पैराग्राफ हैं, जो मुख्य मुरली है उसमें 4 पैराग्राफ हैं, और उनको समराइज, अगर पूरा विस्तार तो नहीं कर पाएंगे टाइम के हिसाब से, तो समराइज करके और जो मुरली के पॉइंट लेके उसमें गहराई में जाने की आज कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि चिंतन क्या है मुरली का। मुरली पढ़ 10 बार पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होता जब तक उस शब्दों की गहराई में नहीं जाए। जैसे बाबा कहा ना कि सागर में ऊपर ऊपर तैरेंगे तो मछलियां ही मिलेंगी, गहराई में जाएंगे तो रत्न मिलेंगे। तो रस क्यों नहीं मिलता? गन्ना को ऊपर से देख लेने बस से आपको स्वाद नहीं मिलेगा उसको। देखो गन्ने को कैसे मशीन में डाल के और पिरो के फिर रस निकालते हैं और उसको पीने का जो आनंद होता है तब पता चलता है। तो आज बाप दादा सर्व किनको देख रहे हैं? आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। तो सिर्फ एक शब्द अगर इस मुरली को उठा लो आप राज्यसभा, तो दुनिया में कितनी सभाएं हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और वो सभाएं कहाँ होती हैं, संसद में। और जो अलौकिक राज्यसभा में है वो कहाँ, सत्संग में। तो बाबा कितना मुरलियों में अलग अलग शब्द उठा, उन राज्यसभा में जो दुनिया के संसद में जो बैठे हुए उनको किसने, दुनिया के लोगों ने चुना, और तुमको किसने चुना, स्वयं भगवान ने चुना है। उनका जो राज्य करने का शासन काल एक जन्म में कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, और तुम्हारा 21 जन्म में कितने वर्षों का होगा, पूरे 5000 वर्ष में तुम्हारा श्रेष्ठ जन्म होगा। उधर 0 हट गए क्योंकि वो 0 को नहीं जानते, हमारे में 0 ऐड है, 3 0, उधर सिर्फ 3 0 नहीं है, उनकी कहानी खत्म हो गई, इधर 3 0 है। कौन कौन 0, हम भी 0, बाबा भी 0, ड्रामा भी 0, इसलिए 5000 वर्ष। तो ये राज्यसभा देख रहे हैं बाबा ने, इसके अंदर देखो बाबा ने कैसे, बाबा ने बताया कि अब ये इसको पहला पैराग्राफ को P1 देते हैं, इसके अंदर कुछ सब टाइटल देखेंगे। तो P1 में जो है राज्यसभा के अंदर बाबा ने क्या क्या देखा कि उन धर्म आत्माओं को, धर्म पिताओं को और महान आत्माओं को, धर्मात्माएं महान आत्माएं, उनको मेहनत लगती है क्या करने में, पावन बनने में उनको मेहनत लगती है, लेकिन तुमको सहज बनते हो, लेकिन कैसे, बाप की याद से, श्रीमत से, और महान पावन पूज्य आत्माएं बनते हो। वो उस, वो तो एक जन्म के लिए, इधर 21 जन्मों के लिए, बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए। उधर तो उनको डर रहता है कभी कोई कहीं से आतंकवादी बम फेंक के हमला करके या गोली मार दे, कोई खतरा है, खतरा ही खतरा है, सिक्योरिटी है, और उनका जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है नीरस। शुरू में तो 1-2 वर्ष उनको अच्छा फील होता है, उसके जैसे ही अंतकाल शुरू होता है उनका राज्य का, तो क्या होता है, उनको निराशा बढ़ती जाती है। तो ये है, और तुम्हें निश्चिंत है, इधर कोई छीनने वाला नहीं, आपका राज्य कोई छीनने वाला नहीं, डर नहीं है इधर आपको। और उधर तो हाँ, उधर पे जो ताज है वो कांटों का है, इधर पे तो लाइट का है, आपका हल्का है, अदृश्य है, दिखता नहीं है ताज, वो खुद लेना पड़ता है अपने पुरुषार्थ से। तो फिर बाबा ने इसमें होली बताया कि हो, ये जीवन जो है होली जीवन है, होली, उस होली को लौकिक होली को इधर की होली से कंपैरिजन किया। तो बाबा ने उधर पे रंग बताया, इधर पे रंग बताया 8 प्रकार के रंग, उधर पे तो वो रंग तो क्या करते हैं, चेहरा काला कर देते हैं, फोटो ने काले तो कैसे देखोगे तुम, काले कलूटे, और इधर बाबा कैसा बनाता है, बाबा के जो 8 रतन है तो 8 रंग है जो बाबा के, वो कैसे बनाते हैं, देवी देवता बनाते, फरिश्ता से देवता बनाते हैं। तो 8 रंग बाबा ने जो दिए, तो 4 रंग मुख्य दिए हैं उसके, उससे कंपैरिजन किया है बाबा ने। तो पहला रंग कौन सा है, ज्ञान का रंग, दूसरा, तीसरा शक्तियों का रंग, चौथा गुणों का रंग, और याद के रंग से क्या होगा, श्रेष्ठ वृत्ति बन जाएगी। फिर ज्ञान के रंग से क्या होगा, दृष्टि श्रेष्ठ बन जाएगी। फिर जब जो भी चीज हम देखेंगे वो दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। जैसे बाबा देखो कोई भी चीज, बाबा एक बार मुरली चला रहे थे तो बाबा ने कहा फॉलो फादर, तो बाबा को उसके फॉलो फादर जैसे बाबा ने बोला वैसे ही बाबा को खांसी आ गई, तो सारे लोग, सारी सभा खांसने लगी। और बाबा ने बोला कि इसमें फॉलो फादर नहीं करना है आपको, आपको फॉलो फादर श्रीमद में करना है। इस सूक्ष्म बात है, देखो बाबा स्थूल से और सूक्ष्म में कैसे कनेक्ट करता है। बाबा इतना बड़ा भगवान और मक्खी के ऊपर मुरली चला दी, लाइट के ऊपर मुरली चला दी बाबा ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाबा के सामने 2006 में बैठे थे, उनके ऊपर मुरली चला दी बाबा ने। और बाबा किसी एक विशेष व्यक्ति को देख के नहीं, उसको लेके और बहुत सारा ज्ञान स्पष्ट कर देते हैं। जब नया फोटोकॉपी मशीन आया यज्ञ में 80 के बाद, तो उसके ऊपर बाबा ने चला दी कि वो फोटोकॉपी मशीन जब अपने जैसे कई प्रतिलिपियां निकाल सकता है तो तुम अपने जैसे नहीं बना सकते लोगों को। तो बाबा देखो छोटी छोटी चीजें, सिर्फ स्थूल चीजें लेता है और उसको अलौकिक में कन्वर्ट करता है। ये ज्ञान ही बड़ा रमणीक है, अटपटा है, कटपटा है, चटपटा है, कैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे कंपैरिजन करता है, जैसे आज बाबा ने ज्ञान योग सेवा को ही चार सब्जेक्ट को चार चीजों में जोड़ दिया। तो सद्भावना का रंग है एक, और शुभकामना का, श्रेष्ठ कामना का, श्रेष्ठ भावना का, और श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ व्यक्ति, तो ये रंग हो गए। अभी अगर इसके पीछे जाएं अपन लास्ट संडे में, तो खुशबू बोला था बाबा ने कि चार खुशबुआ है ना, है चार सब्जेक्ट, लेकिन बाबा ने कैसे कंपैरिजन किया और बाबा ने क्या कहा था, बाबा उन आत्माओं पे आकर्षित होता है जिनमें सारे खुशबुआ है ना। और फिर अगर इसके पीछे थोड़ा और जाएं आप, तो फिर चार चीजें ली थी बाबा ने शिवरात्रि की मुरली में, ज्ञान याद, ज्ञान क्या है, बूंद याद, बूंद है बिंदु, फिर जो तुम धारणा करते हो वो जीवन भर व्रत रखते हैं, और जो तुम सेवा करते हो वो क्या करते हैं, जागरण करते हैं। उसके पीछे और जाओ आप, चार 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 बातें फिर थी होली हंस के लिए, हंस बुद्धि, हंस दृष्टि, हंस वृत्ति और हंस मुख, है ना। आज वही चार बातें बाबा ने कहीं ना कहीं देखेंगे आगे कि वो कैसे बाबा ने स्पष्ट की। तो जो चार रंग हो गए, चार रंग से चार चीज श्रेष्ठ चीजें बन जाएंगी। तो स्थूल से लौकिक में कन्वर्ट किया, उधर का उनका जो लौकिक में होली मनाते हैं उनका फोटो निकालो और आपका निकालो, तो क्या है, ठीक। जो पहला पैराग्राफ में ये कुछ बातें थी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम कम है और मंजिल बहुत लंबी है। दूसरा P2 पैराग्राफ 2 में बाबा ने होली की विशेषताएं बताई, जिसमें तीन विशेषताएं हैं, जलाना, मनाना, मिलना, मनाना मिलना, तीन विशेषताएं होली की बताई। अब बाबा ने देखो कितना उसमें स्थूल चीजें ली हैं और इसमें कैसे किया। तो जो मुरली है ना उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है और VFX भी होता है। ये ऑडियो है, ये वीडियो है और पीछे जो लगा है क्रोमा, इसको VFX कहते हैं, विजुअल इफेक्ट, इसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे बाबा VFX यूज करता है बहुत, हर एक पॉइंट में इफेक्ट डालता है। आपको मुरली हर बार जितने बार आप पढ़ोगे मुरली उतने बार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नया अनुभव ना हो। तो बाबा हर चीज का उपयोग करता है। तो अगला जो है जलाना, होली की विशेषता है जलाना, मनाना, मिलना, फिर जलाना, फिर मिलना। तो इसमें बाबा ने कहा कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार को क्या करना है, जलाना है। जलाने के बाद क्या करते हैं, योग अग्नि में जलाने के बाद मनाते हैं, उधर मिलन मतलब उत्साह मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो तुमको भी क्या मनाना है, योग अग्नि में उनको जला के खुशियां मनानी है, और फिर मिलन मनाना है। मिलन ऐसे नहीं कि गले मिलना है, और कैसा मिलन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि जो आपका सहयोगी है उसी से बस मिलना है, उधर उधर दुश्मन से भी गले मिलते हैं, तिलक लगाते हैं, और कहते हैं ना कि होली में हर दिल मिल जाते हैं, और क्या होता है, गले में गले मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ था कि एक बार होली का एक अनुभव है कि बहुत लौकिक में बहुत विरोध था, कई लोगों ने ज्ञान में चलने के बाद विरोध करते थे बहुत। तो उसके बाद माता जी ने कभी हम लोगों को रोका नहीं कि उन जिनसे विरोध है तो उनके संपर्क में नहीं आओ। तो इतना मतलब वो था कि होली का दिन था और कौन दोस्त कौन दुश्मन सब जानते हुए भी अंदर से दिल हो गया कि अपन तो भगवान के बच्चे हैं, क्या बैर रखना। 25 साल तक कई आत्माओं के साथ ऐसा संघर्ष चला के बहुत परेशान या तंग किया उन्हें। तो होली के दिन ऐसा ही तिलक जो रिवाज है लौकिक में कि तिलक लगाते हैं जाके, और तो हम भी चले गए, तिलक लगाया और पैर पैर छू लिए उनके। तो वो उनके अंदर इतना परिवर्तन हो गया कि जो व्यक्ति ओम शांति नाम से बहुत उनको एलर्जी हो जाती थी, ओम शांति बस भी बोल दिया या सफेद कपड़े वाले कोई दिख गए उनको, तो जब होली में झुक गए उनके सामने तो उन्हें गले लगा लिया। और लौकिक में ऐसा चलता है ना कि वो मिठाई की माला होती है होली के दिन, तो वो गले में डालते हैं। तो भगवान का ज्ञान जो है कहीं ना कहीं प्रेजेंट में तो हमें बहुत सारी प्राप्तियां कराता है, भविष्य का तो ठीक है जो कराएगा कराएगा, लेकिन प्रेजेंट में अगर उस ज्ञान को अच्छे से स्वरूप में धारण करके अगर उपयोग कर लिया जाए तो वो शायद सुख सतयुग का तो अनुभव जो भी है, लेकिन यहाँ जो सुख फील होता है ना वो अंदर आत्मा में वो गहरा छाप चली आती है। और बाबा जो कहा था ना अभी कुछ दिन साकार मुली में कि ज्ञान के आधार से बाबा को पहचानना एक अलग बात है, और अनुभव के आधार से जिसने पहचाना उसको माया हिला नहीं सकती। समझ के अनुसार से ज्ञान में चल रहा है, 10 साल चले 20 साल चले जितने साल भी चले वो कभी भी गायब हो सकता है, लेकिन जो अनुभव के आधार से अगर 1 सेकंड का भी उसको अनुभव कर लिया आत्मा ने तो उसको कभी भी जीवन आजीवन माया हिला नहीं सकते। आएगी विघ्न परिस्थितियां आएंगी जो आज बाबा ने मुरली में कहा। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। सेकंड में क्या था, B2 में 3 बातें थी मनाना और 3 क्वेश्चन बाबा ने कहा। 3 क्वेश्चन होंगे कि जो मूंझते हैं उनके प्रश्न होते हैं, क्या क्यों कैसे। तो बाबा ने कहा क्या क्या कैसे, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मैं बाबा ने कहा माया मेहर पेपर तो होंगे ना, आगे बढ़ने के लिए आए पेपर, तो महान बनाने के लिए आए तुमको पेपर। फिर बाबा ने कहा क्या हुआ, फिर से बोला तो नथिंग न्यू। फिर बोला बाबा ने फिर तो क्या तो है ही नहीं, क्या का प्रश्न है ही नहीं, क्या क्यों कैसे बोला बाबा ने, लेकिन क्यों बस लिया है, कैसे बोले क्या तो खत्म ही हो गया प्रश्न। फिर बाबा ने बोले कैसे हुआ, तो माया आएगी आगे बढ़ाने के लिए। ये 3 है। बाबा ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी होते हुए और कहो कि क्यों क्या कैसे मैं पढ़ू, तो त्रिकालदर्शी हुए क्या, त्रिकालदर्शी हुई ही नहीं। तो फास्ट फ्यूचर को जो जानने वाले और प्रेजेंट को जानने वाले, जैसे बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सही तुम बच्चे क्या हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तुम फरिश्ता से ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता बनने वाले हो। तो बाबा ने कहा कि सारे क्वेश्चन को खत्म करके क्या करना है, फुल स्टॉप। और वैसे भी अगर आप देखो पास्ट में अपने जीवन में जाए अपन, तो क्या होता है अगर सांप को आप पीछे से पकड़ोगे पूंछ, तो क्या होता है, जितने बार आप उसकी पूंछ में हाथ लगाओगे उतने बार काटेगा वो। जैसे ही हम अगर पुरानी स्मृतियां हमारी बीती हैं जो जहरीली हैं, जो सर्प जैसी थी, पुराने लौकिक रिलेशन को भी आप याद करो ना, तो वो सांप जैसे ही डसते हैं। जैसे सांप डसता है ना वैसे ही वो स्मृतियां डसती हैं। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, एक ही भोजन हो तुम्हारा, इस भोजन से परहेज रखो। कौन से भोजन से, व्यर्थ संकल्प को भोजन से परहेज रखना है। और कौन सी ड्रिल करनी है, एक एक्सरसाइज करो, 1 सेकंड में आना है 1 सेकंड में जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब कर्म क्षेत्र में हो तो क्या बन के, कर्मयोगी बन के, बस सेवा में आना जाना, वो तो आगे है, अभी इधर देखते हैं, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या था, फुल स्टॉप। तो वैसे ही एक पुरानी स्मृतियां खत्म जो होगा, और वैसे भी अभी वर्तमान में अगर देखो आप तो ये कोरोना वो कोरोना न्यूज के अलावा कुछ, वर्तमान में बाबा क्या कह रहा है ये हमको समझना है कि वर्तमान में चाहिए क्या लोगों को। अभी भी हमारा जो खट्टर सिंह वाली और उसकी कहानी सुना है ना, खट्टर सिंह वाल नसरुद्दीन नहीं बनो, अभी भी वही रटा रटा है, हम ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, लोगों को चाहिए कुछ और। वर्तमान समय लोग हलचल में है, ब्राह्मण भी हलचल में, भय में है, और बाबा ने कितना तुमको सुरक्षित रखा है। निर्भय तब बन सकते हैं जब ज्ञान में आत्मा डूबी रहे, उसके चिंतन में रहे। तो रटना नहीं है, समझना है, प्रश्न समझना है, पहले जीवन में परिस्थिति वर्तमान में क्या चल रहा है उस हिसाब से करना है, फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद फिर पी थ्री में बाबा ने होली का अर्थ बताया, विशेषताएं हो गई, अभी ये अर्थ बताया, होली अर्थात होली, पास्ट इज पास्ट। तो पास्ट जो मैं बीत गया है ना उसका उपास कर दो, आप छोड़ दो, बीती को चितो नहीं। तो इसमें बाबा ने चार बातें बताई, चार प्रकार की होलियां बताई, प्रकार बताए होली के। पहला बिंदी, पहले बताया बाबा ने जलाना, फिर मनाना, रंगना, जलाना, रंगना, मनाना। तो इसमें बिंदी के लिए क्या बोला बाबा ने, पास्ट इज पास्ट, बिंदी हो गई, तुम बिंदी बन गए। तो बिंदी में तीन चीज याद रखना है, ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी, बाबा बिंदी। अब जलाना, तो कहते हैं कि राक्षस कुल में तीन ऐसी महान विभूतियां हुई जिनका भगवान उदाहरण देता है मुरली में, राक्षस कुल में हुई वो कौन कौन है, वो तीन आत्माएं जो महान आत्माएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनका बाबा याद करते हैं। हाँ, एक विभीषण और प्रहलाद, तीसरा राजा बलि, ये तीनों राक्षस कुल की आत्मा है। तो विभीषण कैसे, रावण की शरण छोड़ राम की शरण में लिया तो राज्यधिकारी बना, और प्रहलाद कितनी पेपर देना पड़ेगी प्राकृति के, प्रहलाद के में दिखाते हैं शास्त्रों में के उसके पांच तत्वों के साथ साथ बहुत सारी चीजों ने परीक्षाएं ली, पांच तत्व उसको जलाया गया, फेंका गया, डुबाया गया, और क्या क्या नहीं किया गया, काटा गया, मारा गया, कुछ नहीं हुआ, गरम गरम खंबे में चिपका दिया गया, कुछ नहीं हुआ, जंगल में कांटे बिछा दिए गए, खाने को नहीं दिए गया, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए फिर क्या कर, हंस का उसकी बुआ थी जो, हाँ उनका कुछ और नाम था ना हंस का, होली का तो जलने के बाद उसका टाइटल मिला उनको, बाकी सिंह का, सिंह का उसकी बुआ का नाम था सिंह का, जिसने तपस्या करके, घोर तपस्या करके क्या पाया, फल प्राप्त किया कि अग्नि से जीत पाली। तो वास्तव में जो भी हमको वरदान मिलते हैं मुरलियों में वो हम श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं तब वो वरदान होते हैं, नहीं तो वरदान जैसे साइंस में कहते हैं ना, साइंस का अगर उपयोग करोगे तो क्या होगा, उन्नति होगी, और अगर दुरुपयोग किया था विध्वंस होगा। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें अध्यात्म से ली गई है। ऐसा ही होली का क्या हुआ कि अगर तुम उसको श्रेष्ठ कार्य के लिए अग्निदेव ने उसको वरदान दिया था, अगर तुमने विपरीत यूज किया तो क्या होगा, विध्वंस हो जाएगा। और कहते हैं कि जब अहंकार उस पेड़ की तरह होता है जो लंबा तो होता है लेकिन उसकी संभावना गिरने की उतनी ही ज्यादा होती जाती है, जो पेड़ जितना लंबा होता है ना, लंबा जितनी हाइट उसकी ज्यादा होगी, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं हाइट ज्यादा होती है तो उतनी उनकी संभावना गिरने की ज्यादा होती है। तो ऐसे ही अहंकार के बस उसने उसको जलाया, लेकिन जीत किसकी हुई, सत्य की हुई, उसने कोई तपस्या नहीं की थी, प्रहलाद ने की थी तपस्या कुछ नहीं, लेकिन वो आग में बिठाया तो भगवान ने मदद की उसकी, तो उसका जीवन ही तपस्या था। क्योंकि एक होता है कि तपस्या करके कोई फल प्राप्त करना, एक जीवन को ही तपस्या बना देना, तो ये ब्राह्मण जीवन तपस्या का जीवन है, हर एक पल पल सब तपस्या का जीवन है। उधर तो जो लोग में बाहर जो तपस्या करते हैं तो वो एक फिक्स टाइम रखते हैं, उपास रखते हैं तो एक फिक्स टाइम रहता है। इधर तुम्हारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है, आजीवन तुम्हारा उपवास है, आजीवन हर चीज है, आजीवन ईश्वरी मत पे चलना है। और ये मत कितनी श्रेष्ठ है। उस प्रहलाद को देखो, कभी उसके चेहरे पर सुकड़न नहीं आई, क्यों? उसको पता था, निश्चय था, नशा था, इसीलिए हर परिस्थिति पार हो गया वो। तो ये चीज था जलाना, जिसके कारण उसको कोई जला नहीं पाई आग। फिर इसके बाद क्या था? रंगना, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे कि जैसा लगता है कि जी रहे संग सदा तेरे। दुनिया में लोग देखो कैसे दुनिया में होली देखो कैसे होती है, वैरायटी वैरायटी प्रकार की होली होती है। तो हमें याद है कि लौकिक में जब थे तो कलर से इतना डर लगता था, दूसरे को लगाने में अच्छा लगता था लेकिन दूसरा लगाए तो डर लगता था, तो क्या करते थे, खुद लगा के निकलते थे बाहर कि ताकि कोई लगा ना पाए, और कभी कलर छुटाते नहीं थे। तो वो भी अलग अनुभव है। और फिर है मिलना, और ये संगम जो है आत्मा परमात्मा का मिलना, यही सबसे बड़ा मिलना है। मुरली में तो बाबा ने बहुत सारी बातें बोली मिलने के लिए, कैसा मिलना है, जय अलौकिक मिलना है तुम्हारा, है ना। तो ये हुआ पी3। इसके आगे चलते हैं पी4। पी4 में बाबा ने कहा पैराग्राफ 4 में, मुलाकात की है मलेशिया, मलेशियन से मुलाकात की है। तो बाबा ने इसमें बड़ी रमणीक रमणीक बातें बोली हैं, बाबा ने मजेदार बातें बोली कि परमात्मा परिवार के स्टीमर से तुम उतर के कहां के कौन से संसार सागर के स्टीमर में चले गए हो। इससे क्या हुआ है, आत्मिक बाम की जगह तुमने देवान का बाम फिट कर लिया है, जिसके कारण क्या हुआ, तुम्हारे स्टीमर में भी रावण ने बम फिट कर दिया है, और वो तुम्हारा स्टीमर क्या हो गया, टूट के बिखर गया। ये बिखरना भी कल्याणकारी, क्योंकि हर अलग धर्म में आत्माएं गई, अलग देश में आत्माएं गई, भारत वाले कहाँ कहाँ जाते हैं, तब तो विश्व कल्याणकारी कहलाओगे। विश्व में सारी आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं फैली हैं, इसलिए तो विश्व कल्याणकारी कहलाओगे। आज जो परिस्थिति है वर्तमान काल की, कई आत्माएं सोचती कि हमें इधर जाना उधर जाना, नहीं, भगवान अगर आपको किसी स्थान पर रखा है, जिस स्थान पे हो आप, वहां के ही कल्याण के लिए आपको रखा है बाबा ने। और ये समय, ये ऐसा समय बाबा ने दिया कि वहां ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो, वहां ही महान बन सकते हो पुरुषार्थ करके, जो जहां है जिस अवस्था में है, फुल स्टॉप, स्टैच्यू हो जाओ वहीं, जो करना है वैसे ही करना है। और इस समय क्या है कि क्या हो गया है, इस समय आलस्य भी बढ़ गया है, ज्ञान इतना, ज्ञान का ओवरलोड ओवरडोज हो गया है कि अब ज्ञान असर ही नहीं कर रहा है। इतनी क्लासेस इतनी ऑनलाइन सेवा हो रही है कि बाहर वाले लोग हमें, अभी कुछ दिन पहले मेल एक देखे थे कि बहुत साल पहले नए नए जब सेंटर गए थे तो एक लोकेशन डाली थी सेंटर की, मेडिटेशन गूगल में मैप में, तो उस समय देखते थे डिटेल की, हर महीने चेक करते थे तो कोई सर्च नहीं करता था। अचानक एक मेल आया कि कई लाख आत्माओं ने विजिट किया, उस सर्च कर रहे लोग कि मेडिटेशन असली कहां से कहा जाए, ऐसे लोग मतलब सर्च कर रहे, फोन भी करते कभी कभी। तो मतलब अब बाहर वाले लोग ढूंढ रहे, मतलब अब ज्ञान आत्माओं के पास पहुंच चुका है। अभी हमको लगता है कि लोग ज्ञान नहीं सुन रहे, एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग ज्ञान सुन रहे हैं, क्योंकि अब बाबा ने क्या कर दिया, पहले लोग क्या बिजी रहते थे यूट्यूब में, तमाम चीजों में, फिल्मों में, सीरियल में, लेकिन अब वो अध्यात्म ही खोज रहे, क्योंकि वर्तमान में परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक रास्ता के अलावा कोई और रास्ता है नहीं लोगों के पास। अभी आप देखो एक बहुत बड़ा ग्रुप है यूट्यूब में, मंथन है करके, जो टोटली ब्रह्मचर्य के ऊपर, और कई करोड़ आत्मा इधर बस की नहीं, भारत के बस की नहीं, विश्व की आत्माओं के अनुभव उसमें डाले, जो सिर्फ ब्रह्मचर्य के ऊपर काम कर रहे, बाहर वाले लोग सोचो, टेलीग्राम में देखो एक सबसे बड़ा टेलीग्राम का ग्रुप ब्रह्मचर। अब दुनिया वाले डॉक्टर भी ये मानने लगे कि इम्यूनिटी पावर इस समय जो जरूरत वो उसी शक्ति से आएगा। तो अब जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग खुद उस तरफ जा रहे हैं। ये समय आ गया। बाबा जो कहा था ना कि लास्ट में मैं डंडे मार के या सजा खिला के या जैसे भी बनाऊंगा युक्ति से, लेकिन ले जाऊंगा सबको पावन बना के। तो अब लोग उस समय उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बम फोड़ना है तुमको, आत्मिक बम फोड़ो। अभी तक तो बाबा ने कहा था ज्वालामुखी योग के सुना था, बम सुना अब तो बम फोड़ो। अब समय नहीं रह गया। तो किसी मुरली में बाबा ने कहा था कि कई लोगों के प्रश्न बहुत रहते हैं कि हम तो अभी आए या वो किया, क्या करें, कैसे पुरुषार्थ करें। उसी में दिल से कसते हैं कि पुरुषार्थ होगा नहीं होगा, क्या होगा, आधे मरे से आधे जी रहे से चल रहे हैं, ऐसे हताश उदास होगा। तो बाबा ने किसी उसमें कहा कि ब्रह्मा बाबा नंबर वन क्यों गया, क्योंकि वो उसके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो अकेला खुद के लिए एग्जाम्पल था। रोंगटे से अर्जुन बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए बोला, तो उसके कारण चले, ब्रह्मा बाबा के अंग कोई नहीं थे इसलिए वो पहन। तो बाबा ने फिर इसी मूल्य में कहा कि लास्ट तो फास्ट आत्मा भी क्यों जाएंगी, क्योंकि उनके पास तो महात्माएं एग्जाम्पल होगी और पूरा ज्ञान स्पष्ट होगा उस समय, अंतिम समय, उसके बाद कोई मूल्य नहीं चलेगी। तो वो शायद बाबा ने देखो सारा है कि अभी कोई मूल्य नहीं चल रही, बाबा नहीं आ रहा है, पूरा ज्ञान स्पष्ट है, सारी अव्यक्त मूल्यां पड़ी हैं सब, हर एक मूल्य में कोई ना कोई आपको राज की बात मिलेगी। तो सारे राज आप बाबा ने खोल चुके हैं जो जरूरी हैं पुरुषार्थ के लिए, और हमारे पास एग्जाम्पल आत्माएं जो हैं जिन्होंने अपना जीवन परिवर्तन किया है वो चल रहा है। आज हम निर्विघ्न इसलिए चल रहे हैं कि पुरानी जो आत्माएं हैं उनके पुरुषार्थ के कारण हम निर्विघ्न चल रहे हैं। जो दादियों ने सेवा की है उसके अनुसार आज तक हम खा रहे हैं, ब्रह्म भोजन भी उसके ही पुरुषार्थ से खा रहे हैं। और लेकिन गंभीर विषय यह है कि अगर आप पुरुषार्थ नहीं किया, इस समय पुरुषार्थ नहीं किया, तो आगे चल के उपास रहना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें बाबा ने बहुत गहरे गहरे शब्द इसके लिए बोले हैं, अलग अलग अव्यक्त वाणियों के। तो ये हो गए चार पार्ट में मूल्य हुई। उसके बाद अव्यक्त महावाक्य के लिए है, क्या था अव्यक्त महावाक्य, महादानी अखंड महादानी बनना है, अखंड महादानी बनो। तो इसमें भी चार पैराग्राफ हैं। तो पहले में बाबा ने क्या कहा, निस्वार्थ। ऐसा नहीं कैसे निस्वार्थ, सब खजानों में निस्वार्थ भाव से देना, स्व को और दूसरी आत्माओं को, जिसमें किसी भी बिना किसी स्वार्थ के। तो उसमें क्या था निस्वार्थ में, हाँ, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी हो, और क्या था, जो खजाने आपने लिए हैं वो देने हैं सबको, और खुशी बढ़ेगी इससे, और क्या होगा, वो आंगे है खुद, और आंगे वाले हैं। हाँ, इधर पे क्या है, संसागर से बावन का सागर जैसे संपन्न है, अखोट है, अखंड है सागर। तो वैसे तुमको देते नहीं, सागर संपन्न है, अखुट है जो कभी घटता नहीं है, और अखंड है सागर का। कहीं आपने देखा पार्टीशन हुआ हो, सागर को कोई पार्टीशन कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाए ना, उससे कोई दुश्मनी मोड़ नहीं लेगा। नदियों को मोड़ सकता है, नदी के बहाव को मोड़ सकते हो आप, दिशा बदल सकते हो, सागर की नहीं बदल सकते। सागर को बदलने जाओगे तो सागर में सागर हो जाओगे, मिल जाओगे। तो ये कुछ एक बात है इसमें बाबा ने बोली। हाँ, जो वो नीचे है, हाँ, महादान करो, हाँ, इसी में महादान करो है। तो बहुत सारी बातें क्या है, कुछ ना कुछ मिस हो जाते। तो अगले पैराग्राफ में फिर बाबा ने बोला, अगले में बोला खुशी के लिए। खुशी का जो खजाना है क्या है, खुशी मूर्त, पीटू है ये दूसरा, वो चार अलग हो गए, ये चार अलग है। तो पहला इसमें अलग हो गया, इसमें दूसरा है। P7 मालिक रहन दिल बनकर भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताओ। दूसरे में क्या है? खुशी। सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या है ब्राह्मण जीवन का? खुशी है। तो खुशी क्या है? खुशी खुशी दान कैसे करेंगे? तो बाबा ने इसमें बताया है खुशी के लिए कि जैसे क्या बताया, तो इसमें इसमें बाबा ने इस समय पांच बातें कंपैरिजन की है। तो मस्तक द्वारा किसी रूहानी स्मृति, स्वस्वरूप की स्मृति, स्वस्वरूप का स्मृति दिलानी है, और हमारे जो नैन हो वो क्या दिखाएं? स्वदेश और स्वराज्य, स्वराज्य की क्या रास्ता बताएं? स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता बताएं। और मुख द्वारा हम क्या करें? ज्ञान के विस्तार को स्पष्ट करने के, श्रेष्ठ रचना के विस्तार को क्या कर? ब्राह्मण से परिस्ता बनने का क्या देना है? वरदान देना है। और फिर हस्तों द्वारा हमें क्या देना है? सहजयोगी कर्मयोगी बन के वरदान देते चलो। और फिर कदम फालो फादर करना है, तो उनको भी कमाई जमा करने का वरदान दो। तो ये पांच बातें ये थी। और छठवां इसमें बहुत पावरफुल एग्जांपल दिया है ओट से वर्जन, हर कर्मिंदी बुद्धिस्ट बाबा ने कैसे लोग फिजिकल चीज से कम मतलब ज्वाइन कर दिया ज्ञान को। तो फिर इस समय बाबा ने बोला ओट से अर्जुन, तो अर्जुन के एक जल्दी बता देते हैं कि जब द्रोणाचार्य अपनी कुटिया में सोए हुए थे रात को, तो अर्जुन धनुष पे धनुष चलाया जा रहा था, उसकी आवाज से द्रोणाचार्य उठ के आए और उनने देखा कि ये शिक्षा तो मैंने इसको दी नहीं और ये कैसे धनुष पे धनुष निशाना लगाते जा रहा है। तो गुरु उसके पास आए तो अर्जुन के पास, तो अर्जुन ने बोला कि ये शिक्षा तो मैंने तुमको दी नहीं, तुम कैसे तीर चला रहे हो? तो अर्जुन ने बोला कि गुरुजी शिक्षा तो आपने ही दी है, लेकिन प्रेरणा मुझे भीम ने दी। बोले वो कैसे? बोले वो अंधेरे में खा रहे थे तो मैंने पूछा कि आपका हाथ मुंह तक कैसे जा रहा है, तो भीम ने कहा कि आंखों में उंगलियां में आंखें हैं। तो अभ्यास अर्जुन और अभ्यास, और अर्जुन ने उसी समय उसी क्षण तीर कमान उठाए और अभ्यास शुरू कर दिया। तो गुरु ने कहा कि शिष्य की ये उत्कृष्टता देख के गुरु को, गुरु आज तुमको ये वरदान देता है कि तुमसे बड़ा युद्ध धनुर्धर कोई नहीं होगा, और आज तक जो शिक्षा मैंने किसी को नहीं दी वो तुमको दूंगा। तो उस समय उस द्रोणाचार्य ने दो शत्रु और दो मित्र बताए अर्जुन को, जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी योद्धे हैं। बाबा कितना अभी मुरली चलाए, तुम रूहानी योद्धे हो, अननोन वॉरियर्स हो, कितना। तो वो दो मित्र कौन से हैं और दो शत्रु कौन से हैं योद्धे के, योगी के, जो बाबा भी कई बार कहता है, कई मुरलियां हैं उस पे। दो शत्रु हैं, एक आलस और निंद्रा, ये योगी के भी बहुत बड़े शत्रु हैं, आलस और निंद्रा। और दो मित्र बताए उसने, परिश्रम सावधानी। वर्तमान समय हमको सावधानी रखनी और परिश्रम करते रहना है देही अभिमानी बनने का। तो ये दूसरे पैराग्राफ में। तीसरे में क्या था? तीसरे पैराग्राफ अनुभवी मूर्त बन अखुट बनाना है और वरदान देना है अनुभवी मूर्त का। तो जो हमने बाबा से अनुभव किए हैं, जो किए हैं, तो अंगस समान, बाबा ने कहा अंगस समान बनना है। अंगस समान, अंगत गया रावण की तो उसको सिंहासन नहीं दिया, उसने अपनी सिंहासन बना लिया कि मैं राम का दूत हूं, मेरा भी कुछ रिस्पेक्ट रिगार्ड है। तो अगर वैसे ही हम रावण राज्य में हैं, रावण राज्य में हम अंगद समान हैं, हम भी इतने निश्चय बुद्धि से कह सकते हैं कि हे रावण तू मेरा पैर हिला के दिखा दे। वो श्री राम ने आदेश नहीं दिया था कि तू सीता को दांव पे लगा दे, लेकिन अंगद ने क्या किया, हे रावण तूने अगर पैर भी हिला दिया ना तो सीता तेरी, रामचंद्र वापस चले जाएंगे। अपनी तरफ से बोल दिया, क्या तुम आत्मा ये दुनिया को चैलेंज कर सकते हो कि तुम हमें विघन डाल के, या माया को चैलेंज कर सकते हो कि तुम हमको हरा के दिखा दो? क्या हम ऐसे चैलेंज कर सकते हैं माया को? माया के चैलेंज अगर आ जाए ना एक पेपर तो भागे भागे फिरते हैं बाबा का कमरा ढूंढते कहाँ है। तो ऐसा है। तो ये था तीसरे, अखंड लंगर चलता रहे इसमें, बिल्कुल निरंतर ज्ञान की धारा ही बरसती रहे। मुख से ज्ञान के अलावा कुछ निकलते ही निकले ही ना, जैसे धारा पे धारा बहती रहे अखंड, कहीं भी खंडित ना हो। अगला है चौथा लास्ट, बड़े से बड़ा पुण्य और सबसे मेन जो मुख्य मूल्य का आधार था वो सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है इस ईश्वरी जीवन का क्या है? देख के नहीं बोलना, पवित्रता का दान देना बड़े से बड़ा पुण्य, पवित्रता का दान देना है। हाँ, तो इसमें बाबा ने क्या क्या बोला, कितनी कितनी बात है बोली कि पवित्र, पवित्रता आत्मघात है और जीदान क्या है, पवित्रता जीदान है। होपलेस केस में आत्मा को होप बना देना, दिल से कष्ट आत्माओं को क्या करना है ना, शक्तिशाली बना दो, निर्मल और दिल से कष्ट आत्माओं को शक्तिशाली बना दो। तो कितना बाबा ने पूरे मूल्य, तो उसमें हर एक पॉइंट बहुत गहरी है, हर एक पॉइंट गहरी है। तो इसमें बताया होपलेस केस में होप पैदा कर देना, और इसमें और क्या था, एक शब्द आया उर्दू का वर्ड, हाँ लास्ट सबसे लास्ट लाइन में है हम शरीक, हम शरीक। और बाबा ने इसमें बहुत गहरा बात बोली है कि अगर ब्राह्मणों को बहाने के दान, ब्राह्मणों को दान नहीं करना, सहयोग देना है और हम शरीक होना है पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ में, मतलब उनको भी सहयोग देना है हमको भी शरीक होना। मतलब जब लॉकिंग में थे तो मुस्लिम में क्या, ईद में शरीक, हम शरीक होना, शादी में हम शरीक होना है, लंगर में हम शरीक होना, लंगर उनके में ही चलता है, भंडारा कहते हैं जिसमें। तो ये सारी चीजें थी, तो बात बहुत थी। पर वरदान में बाबा ने कहा कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इसमें बाबा ने बोला कि एक ही वाचा द्वारा तो एक ही स्थान से करोगे, लेकिन मनसा द्वारा आप एक स्थान पर बैठ के वायुमंडल वातावरण मनसा सेवा से बदल सकते हो, और तभी तुम क्या बनते हो, विश्व कल्याणकारी। फिर बाबा ने एक्सरसाइज बताई है, तो आज शरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए भोजन कौन किसी परहेज करनी है, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करनी है। इसके साथ ओम शांति।